हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम रुमीज़ा रब है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मैं अभी बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स ज्योग्राफी की स्टूडेंट हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा नवी की पुस्तक प्रबोधिनी का पार्ट एक युवाओं से, जिसके कवि हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हुई थी। भारतीय संस्कृति की सुगंध विदेशों में बिखेरने वाले साहित्य, दर्शन और इतिहास के विद्वान स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य मनुष्य में कोई भेद नहीं रहे। स्वामी विवेकानंद का जन्म दिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी मुख्य रचनाएं हैं योग, राजयोग, ज्ञान योग। तो ये बच्चों क्या था, ये हमारे कवि स्वामी विवेकानंद के बारे में उनका लेखक परिचय था। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं आपकी पुस्तक का पेज नंबर 2 पे, और अपन क्या पढ़ते हैं, पाठ परिचय पढ़ते हैं। जान लेते हैं कि इस पाठ के माध्यम से कवि अपन को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी इस पाठ के माध्यम से भारत के नवयुवकों को चरित्र निर्माण की शिक्षा देते हुए उन्हें राष्ट्र के नव निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। वर्तमान में युवाओं को शारीरिक दृष्टि से मजबूत, निर्भय तथा ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता है जो अपने आप में, अपनी शक्ति में विश्वास करते हों। भारत के राष्ट्रीय आदर्श त्याग और सेवा को अपना कर गरीबों, भूखों और पीड़ितों की सेवा में अपने को अर्पित करना ही राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, राष्ट्रभक्ति कोरी भावना नहीं है, उसका आधार विवेक और प्रेम है। स्वामी विवेकानंद के कुछ अंश हैं जैसे कि उठो, जागो और तब तक लड़ो जब तक जीत ना मिल जाए, या जब तक आपको अपना लक्ष्य ना मिल जाए। तो ये क्या था, पाठ परिचय था। पाठ से आपको क्या पता चला इस पाठ परिचय को पढ़ के, यही कि ये पाठ युवाओं के बारे में है, युवाओं की शक्ति के बारे में है, और स्वामी विवेकानंद ये बताना चाहते हैं कैसे आप जैसे युवा, हम जैसे युवा इस भारतवर्ष को, इस भारत को बदल सकते हैं, उन्नति की राह पे ले जा सकते हैं, एक नई आशा की राह पे ले जा सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस पाठ के माध्यम से हमारे महान कवि स्वामी विवेकानंद जी हमें क्या बताना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं। तो बच्चों, सब अपनी पुस्तक का पेज नंबर 3 निकाल लीजिए और यहाँ से अपन इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। पेज नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 1। युवाओं से मेरी आशा, मेरा विश्वास नवीन पीढ़ी के नवयुवकों पर है। उन्हीं से मैं अपने कार्यकर्ताओं का संग्रह करूँगा। वे एक केंद्र से दूसरे केंद्र का विस्तार करेंगे और इस प्रकार हम धीरे धीरे समग्र भारत में फैल जाएंगे। भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा, पर वे शारीरिक शक्ति से नहीं वरन आत्मा की शक्ति द्वारा। वे उत्थान विनाश की ध्वजा लेकर नहीं वरन शांति और प्रेम की ध्वजा से होगा। तो इसके माध्यम से हमारे कवि स्वामी विवेकानंद जी क्या कहना चाहते हैं बच्चों, यही कहना चाहते हैं कि जो उनका विश्वास है, आशा है, ये सारी चीज़ें वो किस पे कर रहे हैं। अब उनको विश्वास किस पर है, युवाओं पर है, नव युवकों पर है। क्यों, क्योंकि वो कहते हैं कि वो उन्हीं के साथ अपना संगठन बनाएंगे, उन्हीं युवकों से मिलेंगे, आज की नई पीढ़ी से मिलेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से जो युवक है वही एक केंद्र से दूसरे केंद्र का विस्तार करेंगे। केंद्र मतलब अपने भारत में अलग अलग केंद्र हैं, जैसे कि खेती बाड़ी का एक केंद्र हो गया, दवाई इलाज का एक केंद्र हो गया, सरकारी केंद्र एक केंद्र हो गया। तो हमारे देश का युवा क्या करेगा, पहले एक केंद्र का विस्तार करेगा, फिर दूसरे केंद्र का विस्तार करेगा। ऐसे कर करके वो भारत के सारे केंद्रों का विस्तार कर देगा और भारत में पूरी तरह फैल जाएगा। और इसमें स्वामी विवेकानंद जी ये भी कहना चाहते हैं कि भारतवर्ष को जो अपन आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं, वो कैसे ले जाएंगे? अपन शारीरिक शक्ति से नहीं ले जाएंगे, आत्मा की शक्ति से ले जाएंगे। और वो ये भी कहना चाहते हैं, अगर भारत को महान बनाना है तो अपन को कैसा बनना होगा, कैसे दूसरों के साथ वर्ताव रखना पड़ेगा, अपन को सबके साथ प्रेम की और शांति के साथ पेश आना होगा। क्योंकि अगर प्रेम और शांति की ध्वजा से ही अपन भारत को महान बनाएंगे तो ही बनेगा, क्योंकि अशांति और विनाश की ध्वजा से नहीं बनेगा। जब तक अपन आपस में लड़ते रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए आपस में सब भाई भाई हैं और एकजुट होकर जब अपन काम करेंगे तो इस देश की उन्नति होगी, अपने राज्य की और अपनी खुद की उन्नति होगी। तो चलिए अपन दूसरे पैराग्राफ पर आते हैं। भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं त्याग और सेवा। आप इन धाराओं में तीव्रता उत्पन्न कीजिए और शेष सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम काम में लग जाओ, फिर देखोगे इतनी शक्ति आएगी कि तुम उसे संभाल ना सकोगे। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने, काम करने से भीतर की शक्ति जाग उठती है। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने से धीरे धीरे हृदय में सिंह का सा बल आ जाता है। तुम लोगों से मैं इतना स्नेह करता हूँ, परंतु यदि तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओ तो भी ये देखकर मुझे प्रसन्नता ही होगी। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं स्वामी विवेकानंद जी? वो ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो महान देश भारत है, वहाँ के दो राष्ट्रीय आदर्श हैं। वो कौन कौन से दो राष्ट्रीय आदर्श हैं बच्चों? त्याग और सेवा। तो वो क्या बोलना चाहते हैं कि हमेशा मतलब ही दुनिया में नहीं जीना है अपन को। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, दूसरों के बारे में भी सोचना है। क्योंकि जो इंसान दूसरे के बारे में सोचता है तो ईश्वर भगवान उसके मन में अपने आप एक अलग तरीके की शक्ति उसको दे देता है, ताकि वो दूसरों के हित के लिए भी काम करे। और फिर उसके अलावा हमारे कवि ये भी कहना चाहते हैं कि वो हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन अगर अपन किसी की मदद करते हुए, किसी की सेवा करते हुए अपन ने अपने प्राण दे भी दिए तो वो उससे अफसोस नहीं करेंगे, वो उससे खुश होंगे कि हाँ, किसी अच्छे काम के लिए आपने अपने प्राण त्याग दे दिए, आपने अपनी जान दे दी। ये सब चीज़ें कौन कह रहा है? हमारे कवि स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं। तो बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 3 है और पैराग्राफ नंबर कौन सा है? 3 ही। केवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है जो पूर्णता निस्वार्थी है, जिसे ना तो धन की लालसा है, ना कीर्ति की और ना किसी अन्य वस्तु की ही। और मनुष्य जब ऐसा करने में समस्त हो जाएगा तो वे भी एक बुद्ध बन जाएगा। उसके भीतर से ऐसी शक्ति प्रकट होगी जो संसार की अवस्था को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है। तो हमारे कवि स्वामी विवेकानंद जी क्या कहना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि इस संसार में, इस धरती पर वही महान हो सकता है जिसके मन में कोई स्वार्थी भाव नहीं हो, जो निस्वार्थ हो, जो हमेशा निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की सेवा करे, जो किसी के बारे में क्या नहीं करे, जो किसी के बारे में हमेशा अच्छा सोचे लेकिन किसी से बदले की भावना से नहीं सोचे कि मैं इसके साथ अच्छा कर रहा हूँ तो ये भी मेरे साथ अच्छा करे, ऐसा नहीं। निस्वार्थ बनना है अपन को, सबकी सेवा करना है। तो ये सब कौन कहना चाहते हैं? हमारे महान कवि स्वामी विवेकानंद जी कहना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं अगर एक मनुष्य के मन में ये सारी भावनाएं आ गई, ये सारी उसने भावनाएं अपने आप में बना ली, उत्पन्न कर ली, तो वो एक दिन क्या बन जाएगा? बुद्ध बन जाएगा और ये संसार उसकी पूजा करेगा, ये संसार उसकी मुट्ठी में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 3 पर। हमेशा बढ़ते चलो, मरते दम तक गरीबों और पद दलितों के लिए सहानुभूति, यही हमारा आदर्श वाक्य है। वीर युवको बड़े चलो, ईश्वर के प्रति आस्था रखो, दुखियों का दर्द समझो और ईश्वर को सहायता की प्रार्थना करो, वे अवश्य मिलेगी। तो इसमें स्वामी विवेकानंद जी क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पागलों की तरह जुटे रहना चाहिए और हमेशा किस पे आस्था रखनी चाहिए? भगवान पे, ईश्वर पे। वो हमारे साथ है और जब अपन उससे कुछ मांगेंगे तो अवश्य वो हमें देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तुम लोग ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागी हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। तुम कैसे अपने को जबरदस्ती दुर्बल कहते हो? उठो साहसी बनो, वीरवान हो। सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो। ये याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो सब तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। कवि क्या कहना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि अपन सब किसकी संतान है बच्चों? अपन सब एक ईश्वर की, एक भगवान की संतान है। अपन सब इंसान हैं। किसी मजहब में बांटने से पहले अपन सब इंसान हैं, क्योंकि सबके अंदर एक ही रक्त है, सबको एक ही भगवान ने बनाया है। अपन सब पवित्र हैं। और अपन को कैसा बनना है? अपन को वीर बनना है, अपन को दुर्बल नहीं बनना है। तो इससे कवि क्या कहना चाहते हैं कि अपने भाग्य के लिए लड़ो, आगे बढ़ते चलो, और आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। इसलिए अपने अंदर एक ज्वाला जो है तुम्हारे अंदर, उसको जगाओ, उसके हिसाब से चलो ज़िंदगी में। चलिए ये अपन जो लास्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 3 का, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। फिर अपन कौन से पेज पे चलेंगे? पेज नंबर 4 आपकी पुस्तक का। बच्चों एक बात पर विचार करके देखिए, मनुष्य नियमों को बनाता है या नियम मनुष्य को बनाते? मनुष्य रुपया पैदा करता है या रुपया मनुष्य को पैदा करता है? मनुष्य कीर्ति और नाम पैदा करता है या कीर्ति और नाम मनुष्य पैदा करते हैं? मेरे मित्रों, पहले मनुष्य बनिए, तब आप देखिए कि वे सब बाकी चीज़ें स्वयं आपका अनुसरण करेगी। परस्पर के दृषित देश भाव को छोड़िए और सदुपाय एवं सत्साहस कीजिए। अपने मनुष्य जाति में जन्म लिया है तो अपनी कीर्ति यहीं छोड़ जाइए। इससे क्या कहना चाहते हैं कवि? कवि ये कहना चाहते हैं कि एक बार इन सब चीज़ों पर विचार करके देखिए। किन चीज़ों पर विचार करके देखिए? कि अपन जो मनुष्य हैं वो नियमों को बनाता है या नियम मनुष्य को बनाते हैं? पैसा जो रुपया है वो मनुष्य को बनाता है या मनुष्य रुपया को बनाता है? इन सब चीज़ों पे विचार करके देखिए, अपनी भावनाओं को बदलिए। कैसे बनिए? सदुपाय बनिए। कैसे? अच्छे साहस के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आपने मनुष्य जाति में जन्म लिया है तो आप सारे अलग अलग गंदे भाव को छोड़ दिए, निस्वार्थ मन से अपने आप की और दूसरों की सेवा करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 4 पे। हमें केवल मनुष्यों की आवश्यकता है और सब कुछ हो जाएगा, किंतु आवश्यकता है वीरवान, तेजस्वी और अंत तक कपड़ रहित नव युवकों की। इस प्रकार से 100 नव युवकों से संसार के सभी भाव बदल दिए जा सकते हैं। और सब चीज़ों की अपेक्षा इच्छा शक्ति का अधिक प्रभाव है। इच्छा शक्ति के सामने और सब शक्तियाँ दब जाएंगी, क्योंकि इच्छा शक्ति ईश्वर से निकल कर आती है। विशुद्ध और शून्य इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है। तो इससे कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि हमें किसकी आवश्यकता है? मनुष्यों की आवश्यकता है। हमें निस्वार्थ सेवा भाव रखने वाले मनुष्यों की आवश्यकता है। वो क्या कहते हैं कि हमारे अंदर सारी चीज़ें होने के साथ साथ क्या होना चाहिए? हमारे अंदर वो भाव होना चाहिए जिससे हम संसार को बदलना चाहें। एक अपेक्षा होना चाहिए, एक अच्छी इच्छा शक्ति होना चाहिए। हमारे अंदर इच्छा होना चाहिए अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए कुछ करने की, अपने घर परिवार वालों के लिए कुछ करने की। तो वो इच्छा शक्ति अगर आपके अंदर है तो आप कुछ कर सकते हो। अगर इच्छा शक्ति है तो आप क्या हो? विशुद्ध में से शुद्ध भी निकाल लोगे। आप सब बच्चों के अंदर भी कोई ना कोई इच्छा शक्ति होगी। आप भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते होंगे। कुछ बच्चों यहाँ कुछ बैठे बच्चों की तो इच्छा शक्ति यही होगी कि उन्हें 10 रुपये मिल जाएँ, 5 रुपये मिल जाएँ, 50 रुपये मिल जाएँ कुछ खाने के लिए। क्योंकि बचपन होता ही इतना नटखट कि अपन को पैसे खाने के लिए या खिलौनों के लिए चाहिए होते हैं। लेकिन जब आप बड़े होंगे, जैसे जैसे आपकी आयु जाती जाएगी, आपको एक अलग इच्छा शक्ति आएगी आपके अंदर। क्या? कुछ करने की, कुछ बनने की। कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई इंजीनियर बनना चाहेगा, कोई पायलट बनेगा, तो कोई साइंटिस्ट बनेगा। तो ये सब क्या है? इच्छा शक्ति है। तो हमारे कवि कहना चाहते हैं एक इंसान की इच्छा शक्ति ही उसे अच्छा बना देती है और बुरा बना देती है। तो एक इंसान की इच्छा शक्ति जितनी अच्छी होगी वो इंसान उतना अच्छा इंसान बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 4 पे, मैंने तो नवयुवकों का संगठन करने के लिए जन्म लिया है, यही क्या प्रत्येक नगर में सड़कों पर और जो मेरे साथ सम्मिलित होने को तैयार हैं, मैं चाहता हूँ कि इन्हें अपरहित गतिशील तरंगों की भांति भारत में सब और भेजूं, जो दीनहीनों और पद दलितों के पर सुख नैतिकता धर्म एवं शिक्षा उखेड़ दे, और इसे मैं करूँगा। तो इसके माध्यम से हमारे कवि स्वामी विवेकानंद जी क्या कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि उन्हें युवक नवयुवकों को एक साथ लाने के लिए, उनके संगठन को तैयार करने के लिए ही जन्म लिया है, उनका काम ही यही है। वो क्या कहना चाहते हैं, अगर उनने सारी जगह पे जैसे कि प्रत्येक नगर में सड़कों पर सब लोगों को एक जगह एकजुट कर लिया, एक जगह इकट्ठा कर लिया, तो वो बहुत खुश हो जाएंगे कि उनकी नैतिकता धर्म और शिक्षा सब उखेड़ ली है उनने, मतलब उनका जो सपना है वो पूरा हो गया है। क्योंकि उनने अगर हर सड़क में या हर शहर में या किसी राज्य के युवकों को एक जगह सम्मिलित कर लिया, इकट्ठा कर लिया, तो उनका जो मार्गदर्शिका है, वो जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 4 पे। बच्चों, मैं सुधार में विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूँ स्वाभाविक उन्नति में। मैं अपने को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित कर अपने समाज के लोगों के सिर पर ये उपदेश, तुम्हें इस भांति चलना होगा, दूसरे प्रकार नहीं, मरने का साहस नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ उस गिलहरी की भांति होना चाहता हूँ जो श्री रामचंद्र जी के पुल बनाने के समय थोड़ा बालू देकर अपना भाग पूरा कर संतुष्ट हो गई थी, यही मेरा भी भाव है। तो इसके माध्यम से हमारे कवि क्या कहना चाहते हैं, वो किस चीज़ पे विश्वास नहीं करते, वो सुधार में विश्वास नहीं करते, बल्कि वो विश्वास करते हैं उन्नति में। वो कहते हैं सुधार और उन्नति, बच्चों दोनों में क्या अंतर है। सुधार मतलब जैसे कि किसी चीज़ में बहुत ही छोटा या बहुत ही कम की बढ़ोतरी होना, लेकिन उन्नति क्या है, ज़्यादा। जैसे कि मान लीजिए आप अभी नवीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो आपके पेपर होते हैं, एक पेपर में आपके 10 नंबर आए, दूसरे पेपर में 12 नंबर आए, तो ये जो 2 नंबर का फासला है वो क्या है, एक तरीके से थोड़ा सा आपका सुधार है। लेकिन उन्नति क्या है, जब आप क्लास में अव्वल आएंगे, प्रथम आएंगे, फर्स्ट आएंगे, वो क्या है, उन्नति है। इसी तरीके से वो क्या कहना चाहते हैं, भारत में थोड़ा सा सुधार नहीं कि कच्ची रोडें हैं तो उन्हें पक्का कर दिया जाए, कच्चे घर हैं तो उन्हें पक्का कर दिया जाए, स्कूल अच्छे नहीं है तो स्कूल अच्छा कर दिया जाए, बल्कि उन्नति, हर चीज़ को अच्छा किया जाए, हर चीज़ में आगे बढ़ा जाए। तो वो किस में विश्वास करते हैं, उन्नति में, सिर्फ सुधार में ही नहीं। वो कहते हैं उनको ईश्वर ने भेजा है ताकि वो दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद कैसे, कि वो नवयुवकों का संगठन बनाए। वो कहते हैं कि जैसे रामचंद्र जी का जो पुल जब वो बना रहे थे, तो जो बालू लेके जो चींटी आई थी वो कितनी संतुष्ट हो गई थी इतनी सी बालू देने में, वैसे ही अगर वो अपना थोड़ा सा ज्ञान, अपने थोड़ा सा जो टाइम है, जो क्या बोलते हैं अपन, टाइम हो गया या अपना वक्त हो गया, ये सारी चीज़ें अगर वो अपन बोलें कि भारत का जो युवक है या नवयुवक है उनको दे देते हैं, तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगे, अपने आप को बहुत ही संतुष्ट महसूस करने लगेंगे अपने आप में कि हाँ उनने वो कर दिया जिसके लिए वो इस धरती पर आए हैं, या उन्हें भगवान ने शायद इसी काम के लिए भेजा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 4 पे ही, लोग स्वदेश भक्ति की चर्चा करते हैं, मैं स्वदेश भक्ति में विश्वास करता हूँ, पर स्वदेश भक्ति के संबंध में मेरा एक आदर्श है, बड़े काम करने के लिए तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है, बुद्धि और विचार शक्ति हम लोगों की थोड़ी सहायता कर सकती है, वे हमको थोड़ी दूर करा देती है, किंतु हृदय के द्वारा महाशक्ति की प्रेरणा होती है, प्रेम असंभव को संभव कर देता है, जगत के सब रहस्यों का द्वार प्रेम है। तो इसके माध्यम से हमारे महान कवि स्वामी विवेकानंद जी क्या कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि वो स्वदेश की भक्ति पर विश्वास नहीं करते, लोग स्वदेश भक्ति पर चर्चा करते हैं, लेकिन वो स्वदेश भक्ति में कि चर्चा नहीं करते, वो स्वदेश भक्ति पे विश्वास करते हैं। लोग सिर्फ चर्चा करेंगे लेकिन वो विश्वास करते हैं। वो कहते हैं स्वदेश भक्ति का जो संबंध है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आदर्श है, वो बहुत ही कोमल हैं। वो कहना चाहते हैं कि हमको सिर्फ बुद्धि और विचार शक्ति ही सफल नहीं करेगी हमारे जीवन में, बल्कि हमारी जो महाशक्ति की प्रेरणा है वो भी हमें सफल करेगी हमारे जीवन में कुछ करने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 4 पे ही। अंततः मेरे भावी संस्कार को, मेरे भावी देशभक्तों, तुम हृदयवान बनो। क्या तुम हृदय से समझते हो कि देव और शंडियों की करोड़ों संतान पशुतुल्य हो गई हैं? क्या हृदय में अनुभव करते हो कि करोड़ों आदमी आज भूखे मर रहे हैं और वे कई शताब्दियों से इस भांति भूखे मरते रहेंगे? क्या तुम समझते हो कि अज्ञात के काले बादल ने सारे भारत को अस्वच्छ कर दिया है? क्या तुम ये सब समझकर कभी अस्थिर हुए हो? तो इससे कवि क्या कहना चाहते हैं, इससे कवि कहना चाहते हैं कि देशभक्तों, तुम बहुत ही समझदार हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन सोचो, उन लोगों के बारे में सोचो जो भूखे मर रहे हैं। ये जानते हुए भी सोचो, ये तुम जानते हो कि वो आने वाले सालों में भी भूखे मरते रहेंगे, लेकिन अगर तुम बैठे रहे, तुमने कोई भी बदलाव नहीं लाए, चुपचाप बैठे रहे, तो ये समझदारी नहीं है तुम्हारे लिए। ये बहुत ही गलत चीज़ है जो तुमको गलत राह पे ले जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या तुम कभी इसमें अनिदित हुए हो? क्या वे तुम्हारे हृदय के स्वप्न से कभी मिली है? क्या उसने कभी उसे पागल बनाया है? क्या कभी तुम्हें निधरता और नाश का ध्यान आया है? क्या तुम अपने नाम, यश, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी भूल गए हो? क्या तुम ऐसे हो गए हो? यदि हो तो जानो कि तुमने स्वदेश भक्ति की प्रथम सीढ़ी पर पैर रखा है। तो इससे स्वामी विवेकानंद जी क्या कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि अगर तुम अपनी मतलब ही दुनिया में जी रहे हो, अगर तुम नाश, जो नाश है मतलब चीज़ों को बर्बाद कर देना, इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हो और तुम अपने शरीर के बारे में भी भूल गए हो, तुम सब कुछ भूल गए हो, तो जान लेना कि तुमने विदेशी भक्ति में की जो सीढ़ियाँ हैं उसमें प्रथम कदम रख दिया है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 5 निकालिए। उठो जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ, अपने नर जन्म को सफल करो। उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो अपने आप में विश्वास नहीं करता वे नास्तिक है। प्राचीन धर्मों ने कहा है वे नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है वे नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। तो यहाँ पे जो महान कवि स्वामी विवेकानंद हैं उनके लिखे गए कुछ महान वाक्य हैं जब उनने लिखे थे, जब आज़ादी के लिए वो लड़ रहे थे, हमारे सभी महान जो नेता थे उस टाइम के जो लड़ रहे थे, तो उन्हें ये लिखे थे। तो इन सबको पढ़ के जब आज अपन के अंदर इतना जुनून शक्ति भर देते हैं ये, तो उस टाइम तो माहौल ही ऐसा था, उस टाइम तो वातावरण ही ऐसा था, तो ऐसे चीज़ों की उस वहाँ बहुत ही ज़रूरत थी। तो हमारे महान कवि स्वामी विवेकानंद जी क्या कहना चाहते हैं कि बच्चों सब उठ जाओ, उठो जागो और आगे बढ़ो। आपने नर जीवन को क्या करो, सफल करो। नर जीवन मतलब एक युवक की तरह जन्म लिया है तो उसे बर्बाद मत करो। आप बहुत कुछ कर सकते हो, उठ जाओ। सिर्फ घर पर सोने से और आंखें बंद करके सपने देखने से और आंखें खोल के दोनों तरीके के सपने देखने से सपने सफल नहीं होंगे जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। और दूसरी ओर कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि कहना चाहते हैं उठो जागो और चलो अपनी लक्ष्य की तरफ, और तब तक नहीं रुको जब तक तुम्हारा जो लक्ष्य है जिसे तुम पाना चाहते हो वो पा नहीं लो। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि प्राचीन धर्म में कहा जाता था वो इंसान नास्तिक है जो धर्म में विश्वास नहीं करता, लेकिन आज का धर्म क्या बोलता है, वो नास्तिक है जो अपने आप पर विश्वास नहीं करता। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 5 पे ही। ये एक बड़ी सच्चाई है, शक्ति की ही जीवन और कमजोरी ही मृत्यु है। शक्ति परम सुख है, जीवन अजर अमर है। कमजोरी कभी न हटने वाला बोझ और यन्यता है, कमजोरी ही मृत्यु है। सबसे पहले हमारे तरुणों को मजबूत बनना चाहिए, धर्म इसके बाद की वस्तु है। मेरे तरुण मित्रों शक्तिशाली बनो, मेरी तुम्हें यही सलाह है। तुम गीता के अध्ययन की अपेक्षा फुटबॉल के द्वारा ही स्वर्ग के अधिक समीप पहुंच सकोगे। ये कुछ कड़े शब्द हैं, पर मैं उन्हें कहना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि कांटा कहाँ चुभता है, मुझे इसका कुछ अनुभव है। तुम्हारे स्नायु और मांसपेशियों अधिक मजबूत होने पर तुम गीता अधिक अच्छी तरह समझ सकोगे। तुम अपने शरीर में शक्तिशाली रक्त प्रवाहित होने पर श्री कृष्ण के तेजस्वी गुणों और उनकी अपार शक्ति को अधिक समझ सकोगे। जब तुम्हारा शरीर मजबूती से तुम्हारे पैरों पर खड़ा रहेगा और तुम अपने को मनुष्य अनुभव करोगे, तब तुम अपेक्षित और आत्मा की महानता को अधिक अच्छा समझ सकोगे। तो इसके द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं, तो चलिए अपन समझते हैं। ऊपर वाले ने जो ईश्वर और भगवान की सबसे अनमोल चीज़ जो दी गई है इस धरती पे, वो पहली चीज़ तो खुद ये धरती है कि ऊपर वाले ने ये हमें धरती दी। उसके बाद हमारा जीवन है, फिर हमारे माता पिता हैं, हमारा परिवार है। तो हर इंसान इस दुनिया में जो आया है, आप सबको पता है बच्चों, उसको एक दिन ऊपर जाना ही है। जो चीज़ पैदा हुई है उसको एक दिन मृत्यु ज़रूर ही आएगी। तो जो हमारी जीवन है वो हमारी शक्ति है। हम जीवन को कितने अच्छे से व्यतीत करते हैं, कितने लोगों की सेवा करते हैं, ये सब हमारी शक्ति है। लेकिन जिस दिन हम मर जाएंगे वो क्या होगा, वो हमारी कमज़ोरी होगी। तो ऊपर वाले ने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है तो किसी अच्छे काम के लिए दिया है, बुरे काम के लिए नहीं दिया। इसलिए आप अच्छे काम करो, देश के लिए, राज्य के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए, ताकि आप अपनी कमज़ोरी आने से पहले अपनी शक्ति को और मजबूत कर लो, कि कमज़ोरी जब आए तो उसको आप और कमज़ोर बना दो। मतलब ऐसे बनो कि अपनी शक्ति को महाशक्ति में बदल दो। अपनी ये जो ज़िंदगी है उसको ऐसे व्यतीत करो, ऐसे जियो, एक अच्छे नागरिक की तरह, एक अच्छे बेटे, एक अच्छे देश के बेटे की तरह, एक धरती माँ की, जो धरती माँ है वो हमें पुकार रही है कुछ अच्छे काम करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे कवि कहना चाहते हैं। वो ये भी कहना चाहते हैं कि जो गीता का अध्ययन है वो उन्हें किसकी अपेक्षा बताया है, फुटबॉल के अपेक्षा बताया है। फुटबॉल आपने देखी होगी, वो फुटबॉल के अपेक्षा उन्हें बताया है कि जैसे आप फुटबॉल के करीब जाते हो तो आपको खेलना पड़ता है, वैसे ही गीता का अध्ययन आपको उसके समीप ले जाएगा। वो ये भी कहना चाहते हैं कि अपने मांसपेशियों को मजबूत करो। तुम युवक हो, नव युवक हो, तुम्हारे अंदर आज का जो नया खून है वो दौड़ रहा है। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी सहूलत है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर तुम ठान लो तो तुम पर्वत पे भी चढ़ जाओगे, और अगर तुम ठान लो तो दुनिया को भी बदल दोगे। तो तुम अपने मांसपेशियों को बढ़ाओ, उनको ताकतवर बनाओ, और अपने मन से, तन से, और अच्छे, मतलब जैसे चाहो वैसे अच्छे काम करो। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 5 पे ही। मैं अभी तक के धर्मों को स्वीकार करता हूँ, मैं उन सबकी पूजा करता हूँ, मैं उनमें से प्रत्येक के साथ ईश्वर की उपासना करता हूँ, वे स्वयं चाहे किसी भी रूप में उपासना करते हों। मैं मुसलमानों की मस्जिद में जाऊँगा, मैं ईसाइयों के गिरजा में क्रॉस के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करूँगा, मैं बौद्ध मंदिरों में जाकर बौद्ध और उनकी शिक्षा की शरण लूँगा, मैं जंगल में जाकर हिंदुओं के साथ ध्यान करूँगा। तो इन सबसे कवि क्या कहना चाहते हैं स्वामी विवेकानंद जी, इन सबसे स्वामी विवेकानंद जी कोई एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अपन सबको पता है अपन एक ही भगवान, एक ही ईश्वर की संतान है। कोई धर्म में बटने से पहले अपन क्या है बच्चों, अपन सब एक मनुष्य हैं, क्योंकि एक ही भगवान ने अपन को पैदा किया है। तो हमारे कवि स्वामी विवेकानंद जी भी यही कहना चाहते हैं कि मैं सारे धर्मों को स्वीकार करता हूँ, मैं ये नहीं कहता, वो सारे धर्मों को मानते हैं, वो ये नहीं कहते कि मैं सिर्फ या तो हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ या क्रिश्चियन हूँ, ऐसा नहीं कहते हो। वो कहते हैं मैं सारे धर्मों की पूजा करता हूँ और सारे धर्मों को स्वीकार करता हूँ। वो ये कहते हैं कि मैं सारे ही ईश्वर को मानता हूँ, और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि वो मुसलमानों के मस्जिद में भी जाएंगे, क्रिश्चियनों के चर्च में भी जाएंगे, और पंडितों के साथ जंगलों में बैठ के ध्यान भी लगाएंगे। तो इससे क्या दर्शा रहे हैं वो, कि वो सारे धर्मों को एक साथ रख रहे हैं, किसी को बांट नहीं रहे हैं। यही अपन को सीखना है, अपन को कभी अपने आप को धर्म के बंटवारे में नहीं खड़ा करना है कि धर्म के उससे हम बंट जाएं। हम हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चन, कोई होने से पहले एक मनुष्य है, और हम सब धर्म वाले कौन है, भाई भाई हैं। यही हमारी भारत की शान है कि हम सब एकजुट होकर इस भारत में एक साथ रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 5 पे ही। शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूस दिया गया है, और जो आत्ममस्तात हुए बिना वहाँ आजन्म पड़ा रहकर गड़बड़ मचाया करता है। हमें उन विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है जो जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो। यदि आप केवल 5 ही परखे हुए विचार के लगा रहे हैं तो आप चरित्र का निर्माण कर लेते हैं, तो आप पूरे संग्रहालय को करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित हैं। अपने भाइयों का नेतृत्व करने का नहीं, वरन उसकी सेवा करने का प्रयत्न करो। नेता बनने की इस कूर उन्नता में बड़े बड़े जहाज़ों को इस जीवन रूपी समुद्र में डुबो दिया है। मैं तुम सबसे यही चाहता हूँ, तुम आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी और ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ दो। मुझे पृथ्वी माता की तरह सहनशील होना चाहिए। यदि तुम ये गुण प्राप्त कर सको तो संसार तुम्हारे पैरों पर लौटेगा। तो चलिए बच्चों, अपन ने ये सब पढ़ा, पहले अपन समझ लेते हैं इन सब से हमारे महान कवि स्वामी विवेकानंद जी क्या कहना चाहते हैं। तो वो कहना चाहते हैं, जो शिक्षा है, ये जो आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये जानकारियों का ढेर नहीं कि आपके दिमाग में खुद ठूस दिया जाए, ये आप खुद लेंगे तो आपके पास आएगी। क्योंकि जब तक आप खुद शिक्षा के पीछे नहीं भागेंगे, शिक्षा आपके पास नहीं आएगी। और जब आप जीवन निर्माण के लिए, चरित्र निर्माण के लिए आगे आएंगे, तो एक अच्छे मनुष्य का निर्माण होगा। और हमारे महान कवि ये भी कहना चाहते हैं कि इस धरती पे हर इंसान नेता बनना चाहता है, हर इंसान चाहता है कि वो नेता बन जाए, नेतागिरी करे। और ये जो नेतागिरी का जो भाव है, हर इंसान कूटता के साथ नेता जो बनना चाहता है, उस दौड़ में इतने लोग हैं कि हजारों जहाज डूब चुके हैं। और कवि ये भी कहना चाहते हैं कि अपने दिल में, अपने मन में, अपने तन में जितनी भी जो गलत चीज़ें हैं, जो आपके दिमाग में चलती हैं, जो गलत बातें, उन सबको निकाल दो। निस्वार्थ बनो, दया की दृष्टि से सबको देखो, दूसरों की सेवा करो, ये सब करो। जैसे कि हमारी धरती माँ हमारी सेवा करती हैं, हमें सब कुछ देती हैं, लेकिन आज तक हमें से कुछ वापस मांगा नहीं, क्योंकि वो निस्वार्थी हैं। ऐसे ही निस्वार्थ मन से अपन को भी दूसरों की सेवा करना है। अगर अपन ऐसा करेंगे, धरती माँ की तरह बनेंगे, पृथ्वी की तरह बनेंगे, तो पूरा संसार अपने कदमों पर लौटेगा, और हर इंसान अपनी क्या करेगा, कदर करेगा, हर इंसान के सामने अपना सम्मान होगा। तो चलिए बच्चों, पेज नंबर 6 पे आते हैं, और ये जो आपके प्रश्न उत्तर हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 और 2 के तो आंसर्स नीचे दिए हैं और आपने चैप्टर में पढ़ा भी है। बाकी अपन प्रश्न नंबर 3 और बाकी के जो प्रश्न नंबर बड़े बड़े हैं उनके उत्तर मैं आपको बता देती हूँ, और ये भी बता दूंगी कौन से पेज नंबर पे आपने पढ़ा था, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा बच्चों। चलिए प्रश्न नंबर 3 क्या है, विवेकानंद की दृष्टि में भारत के पुनरुत्थान का सर्वश्रेष्ठ आधार क्या हो सकता है। विवेकानंद की दृष्टि से बताइए स्वामी विवेकानंद जी क्या कहना चाहते हैं बच्चों, बताइए बताइए। हाँ, तो स्वामी विवेकानंद यही कहना चाहते हैं, अगर भारत को बहुत आगे ले जाना है तो अपन को क्या करना चाहिए, शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति से अपन को सोचना चाहिए। ये कौन से पेज नंबर में दिया है, पेज नंबर 3। बच्चों अपन ने पेज नंबर 3 में पढ़ा था ना अभी पढ़ते टाइम, आत्मा की शक्ति के द्वारा अपन भारत का पुनरुत्थान कर सकते हैं। और अपन ने ये भी पढ़ा था क्या, कि आपस में मिलजुल कर शांति की भावना से, प्रेम की भावना से अपन आगे बढ़ सकते हैं, अगर आपस में लड़ेंगे तो ये सब नहीं हो पाएगा। तो चलिए अपन दूसरे प्रश्न पे आते हैं, मतलब अपना जो 4th प्रश्न है पेज नंबर 6 पे, विवेकानंद व्यक्ति के लिए शक्ति प्राप्त करने का सुलभ स्रोत क्या मानते हैं। शक्ति कहाँ से मिलती है, शक्ति अलग अलग प्रकार से मिलती है। आप जो करना चाहते हैं अगर उसके लिए आपके अंदर जुनून है तो आपके अंदर अंदर से शक्ति आएगी, फिर शक्ति आपके चरित्र से, भगवान आपकी शक्ति, ईश्वर आपको शक्ति देने वाला है। जब आप दूसरों के लिए हित के बारे में सोचते हैं तो खुद ही आपके मन के अंदर एक ऐसी शक्ति आ जाती है कि आप उनके लिए भी कुछ कर जाएं। प्रश्न नंबर 5, मैं तो सिर्फ उस गिलहरी की भांति होना चाहता हूँ जो श्री रामचंद्र जी के पुल बनाने के समय थोड़ा बालू देकर अपना भाव पूरा कर संतुष्ट हो गई थी। यही मेरा भी भाव है, इस पंक्ति से विवेकानंद क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? इस पंक्ति से हमारे महान कवि स्वामी विवेकानंद जी भी यही कहना चाहते हैं कि जैसे उस छोटी सी चींटी ने अपना छोटा काम देकर ही, एक छोटा सा काम कर दिया था रामचंद्र का, लेकिन बहुत खुश थी, अपना थोड़ा सा बलिदान तो दिया, अपना थोड़ा सा काम तो आई, वो किसी काम तो आई। ऐसे ही हमारे महान कवि कहना चाहते हैं कि अगर उन्हें कोई भी सड़क पे, कोई भी नगर में जो नव युवक हैं उनको एकजुट कर लिया तो वो मान लेंगे, अगर उन्हें अपना थोड़ा सा भी वक्त इन लोगों को दे दिया तो वो मान लेंगे, वो संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ उनने अपना काम कर दिया। प्रश्न नंबर 6, स्वदेश भक्ति से सामान्य अर्थ क्या लिखा गया जाता है? तो क्या यहाँ पे स्वदेश भक्ति की बात हुई है? तो हमारे कवि ने बोला था ना, जब आप मतलबी दुनिया में जीने लोगों, जब आपको यही नहीं पता हो आपका शरीर क्या है, लाखों लोग भूखे मर रहे हैं तो मरने दो, जब आपके अंदर ऐसा भावनाएं आ जाए तो इससे आपको क्या सोचना चाहिए कि स्वदेश भक्ति की जो प्रथम सीढ़ी है वो आपने छू लिए या उस पर आपने कदम रख दिया है। और बाकी प्रश्न नंबर 7, विवेकानंद तरुणों को शारीरिक दृष्टि से अधिक शक्तिशाली बनने को प्राथमिकता देते हैं, इसके पीछे उनके क्या तर्क हैं? क्या अधिक शक्तिशाली, कैसे अधिक शक्तिशाली बनने की प्रेरणा दे रहे हैं? क्योंकि जो हमारे वीर जवान हैं वो सरहदों पे लड़ रहे हैं, तो हम जो हम भारत में अंदर जो नेता हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, राष्ट्रपति, ये सब क्या हैं कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ दिमाग से नहीं, शारीरिक बल से भी तो जीतना चाहते हैं ना, क्योंकि ऐसा नहीं है सिर्फ दिमाग से ही खेला जाए, शारीरिक बल भी होना चाहिए इंसान के अंदर। क्योंकि अगर एक जो बहुत ही अच्छा वीर है, वीर जवान है जो सरहद पे खड़ा है, अगर उसके अंदर शारीरिकता नहीं होगी, एक अच्छी तरीके से उसका शरीर नहीं बना होगा, उसके अंदर वो सारी चीज़ें नहीं होंगी जो एक अच्छे शरीर के लिए होती हैं, एक स्वस्थ शरीर की ज़रूरतें होती हैं, तो कैसे लड़ पाएगा वो सरहद पे? तो वो यही कहना चाहते हैं कि जब तक आप शारीरिक तरीके से अच्छे नहीं होंगे, दुर्बल नहीं होंगे, अच्छे तरीके से अपने आप को ढालेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, धर्म के बारे में आप विवेकानंद को उदार दृष्टिकोण वाला बनाते हैं या संकीर्ण? अपना उत्तर दीजिए। तो आप क्या करना चाहेंगे कि उनकी सोच बहुत ही परम पूज्य थी। कैसे परम पूज्य थी? क्योंकि वो किसी एक धर्म को मानने वाले नहीं थे, वो सारे धर्मों को मानते थे, और वो कहते थे कि मैं सारे भगवान को मानता हूँ, ना ही मैं मुसलमान हूँ, ना ही मैं हिंदू हूँ, और ना ही मैं क्रिश्चन, मैं हर जगह जाऊँगा, मैं मुसलमानों की मस्जिदों में भी जाऊँगा, मैं क्रिश्चन के चर्च में जाकर क्रॉस के सामने घुटने टेकूँगा, और मैं हिंदू होने के वास्ते क्या करूँगा, या तो हिंदू धर्म फॉलो करने के वास्ते, हिंदू धर्म को मानने के वास्ते क्या करूँगा, पुजारियों के साथ जंगल में जाके ध्यान भी लगाऊंगा। तो ये सब बातों को देखते हुए स्वामी विवेकानंद की हम कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद की जो सोच थी वो बहुत ही उच्च थी, और वो किसी एक धर्म को मानने वाले नहीं थे, वो एक ईश्वर पे भरोसा करते थे, वो कहते थे एक ही ईश्वर ने सारे धर्म को बनाया है। बच्चों प्रश्न नंबर 10वां और 11वां जो है वो आप अपने हिसाब से लिखिएगा, आप बताइएगा कि आपकी शिक्षा में क्या क्या कमियां हैं और कैसे उसको अच्छा किया जा सकता है, और प्रश्न नंबर 11 जो है उसमें आप व्याख्या कीजिएगा। और इस पार्ट में आप इतना ही पढ़ेंगे, ये पार्ट युवाओं से जो हमारे महान कवि स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है, इस पार्ट से आपने क्या क्या सीखा बच्चों? पहले तो आप सब बच्चे जो हैं, जो युवक हैं, वो क्या है, हमारे देश का भविष्य है। आप तय करेंगे कि हमारा जो देश का भविष्य होगा वो कैसा होगा, इसलिए आपका जो एक एक उत्तर होगा, आपका जो एक एक राह होगी कि मैं ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा, वो क्या करेगी, वो हमारे भारत के भविष्य को सुधारने में और बिगाड़ने में मदद करेगी। अगर आप एक अच्छी राह चुनेंगे तो हमारा देश महान बनेगा, लेकिन एक बुरी राह चुन लेंगे तो उससे हमारे देश को, आपके परिवार को, आपके राज्य को, आप खुद को ही नुकसान होगा। तो हमने स्वामी विवेकानंद से क्या सीखा है, एक अच्छे और सच्चे भाव से दूसरों की सेवा करना है जैसे वो करते हैं, कभी धर्म के उससे अपन को एक दूसरे से लड़ना नहीं है, एकजुट रहना है। और आप जो हो, आप सब बच्चे जो यहाँ बैठे हो, वो हमारे भारत का भविष्य हो, तो आगे आइए, अपने सपनों को साकार करिए, आगे बढ़ते चलिए, और तब तक नहीं रुकना है जब तक आप अपने सपनों को साकार नहीं कर लें। तो चलिए बच्चों, आज तक के लिए इतना, अलविदा, नमस्कार।